नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नाकामी बताया। कहा, अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों से सलाह किए बिना ईरान पर हमला किया। हिंद महासागर में अमरीकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत डुबाने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहराया। 78 नाविक बचाए गए, 100 नाविक अब भी लापता। शरण आवेदनों की चिंताओं के बीच ब्रिटेन ने 4 देशों के अध्ययन वीजा पर प्रतिबंध लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टफ से मुलाकात करेंगे। और कोलकाता में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नाकामी है और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले अपने मित्र राष्ट्रों से सलाह नहीं ली थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के बाद शनिवार को अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने ईरान पर हमला किया। ये लड़ाई अब ईरान की सीमाओं से आगे फैल गई है। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और कतर जैसे खाड़ी देशों के साथ साथ सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी दूतावास पर भी ईरान ने हमले किए हैं। इससे अमरीका को पूरे क्षेत्र में अपने राजनयिक मिशन बंद करने पड़े हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रशासन से जुड़े बासिज और आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्रों पर इसराइल के हमलों से पश्चिम एशिया में जारी संकट और गहरा गया है। इसराइली रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान देश भर में नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन कमान केंद्रों का इस्तेमाल करता है। IDF ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। इसराइल की वायुसेना ने यह भी कहा कि वायुसेना विमानों के खिलाफ वायु रक्षा प्रणाली संचालित करने वाले ईरानी सैनिकों को भी मार दिया गया है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से ईरान में 1097 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट।
इसराइल की वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने आज चेतावनी दी कि जिसे ईरान का अगला सर्वोच्च नेता चुना जाएगा उसको खत्म करने पर भी विचार होगा। इससे पहले कल इसराइल की सेना ने विशेषज्ञों की सभा के एक भवन पर हमला किया। ये सभा धार्मिक नेताओं का समूह है जो ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन करती है। अमरीकी युद्ध विभाग के बयान में कहा गया है कि कुवैत के शुएबा बंदरगाह पर ड्रोन प्रणाली के हमले में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमरीकी सेना के 4 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं। इस बीच साइप्रस पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा उपकरण तैनात कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
अमरीकी पनडुब्बी द्वारा हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबाने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहरा गया। लगभग 78 नाविकों को बचा लिया गया जबकि 100 नाविक अब भी लापता हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हैक्सेथ ने दावा किया है कि अमरीकी पनडुब्बी से दागे गए टॉर्पीडो ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत को डुबो दिया। पेंटागन से हैक्सेथ ने कहा कि ईरान के युद्धपोत पर कल रात का हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन पर ऐसा पहला हमला है। इससे पहले श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा था कि युद्धपोत के चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कई शव बरामद हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए समुद्र तट पर लाया गया। एक रिपोर्ट।
अमरीकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत IRIS डेना पर श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास किया गया आज का हमला मध्य पूर्वी संघर्ष को फरस की खाड़ी से आगे ले गया है। ये घटना गोल से लगभग 40 समुद्री मील दक्षिण उस समय हुई जब जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के बाद ईरान लौट रहा था। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बचाव कार्यों के लिए जहाज और विमान तैनात किए। श्रीलंकाई नेवी ने कहा कि उन्होंने कई चालक दल के सदस्यों को बचा लिया है और समुद्र से कई शव बरामद किए गए हैं। कम से कम 75 नाविकों के घायल होने की सूचना है जबकि 100 से भी अधिक लोग अभी भी लापता हैं। हिंद महासागर में खोज और बचाव अभियान जारी है। विश्व दर्पण के लिए अहमद मुईन फारूकी, कोलंबो।
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हैक्सेथ ने कहा है कि ईरान के मीनाब के बालिका स्कूल पर घातक हमले की जांच की जा रही है। ईरान के अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले में कई बच्चियों सहित 153 लोग मारे गए हैं। श्री हेक्सेथ ने कहा कि अमरीका रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाता है और इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक मांग के मद्देनजर टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस चार्ल्स डी गॉल के लिए अतिरिक्त क्षमता वाली उड़ानें संचालित की जाएंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि कल से 11 मार्च तक दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित होंगी। 7 मार्च से 10 मार्च तक दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच 3 उड़ानें तथा दिल्ली और पेरिस के बीच 1 उड़ान अतिरिक्त चलेगी। एयर इंडिया ने बताया कि इन अतिरिक्त उड़ानों से यात्रियों को इन चुनिंदा मार्गों पर उड़ान के ज्यादा विकल्प मिलेंगे, जिससे दिल्ली के अलावा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के गंतव्यों के लिए संपर्क सुगम होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन ने 4 देशों के अध्ययन वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानूनी रूप से देश में प्रवेश करने वालों के शरण आवेदनों को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान के विद्यार्थियों के लिए ये प्रतिबंध लागू किया गया है। इन देशों से शरण के आवेदनों में अत्यधिक वृद्धि के बाद अफगानिस्तान के नागरिकों पर कुशल कामगार वीजा के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद इस सप्ताह संसद में नया विधेयक पेश कर रही हैं। आवर्जन नियमों में बदलाव के माध्यम से बृहस्पतिवार को वीजा प्रतिबंध लागू किया जाएगा, जो 26 मार्च से प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे कल राष्ट्रपति स्टप से होने वाली मुलाकात और रायसीना संवाद 2026 में उनके मुख्य भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्री स्टब रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी हैं। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब कल विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री फिनलैंड के राष्ट्रपति के सम्मान में दोपहर का भोजन का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी राष्ट्रपति स्टब से मुलाकात करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति का मुंबई का दौरा करने का भी कार्यक्रम है, जहां वे महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय व्यापार जगत के नेताओं से बातचीत करेंगे और भारत फिनलैंड व्यापार सम्मेलन में भाग लेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति मुंबई विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बना ली है। कोलकाता में खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 170 रन का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड ने यह लक्ष्य 13वें ओवर में ही हासिल कर लिया। फिन एलन को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से फाइनल खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नाकामी बताया। कहा, अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों से सलाह किए बिना ईरान पर हमला किया। हिंद महासागर में अमरीकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत डुबाने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहराया। 78 नाविक बचाए गए, 100 नाविक अब भी लापता। और कोलकाता में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।